क्योंकि समाज के अज्जा अनासिर जिससे समाज तश्कील पाता है वो यही है। कुरान मजीद ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारा कुनबा हमारा खानदान हमारी फैमिली सालिम है तो समाज भी सालिम है। अगर हमने अपने खानदान को बहिष्ती खानदान बना दिया तो समाज भी बहिष्ती समाज होगा, और अगर हमने अपने कुनबे को और अपने खानदान को जहन्नमी खानदान बना रखा है तो मुहाल है कि समाज बहिष्ती समाज है। किस तरह से हम अपनी फैमिली को बहिष्ती फैमिली बना सकते हैं, अपने खानदान को बहिष्ती खानदान बना सकते हैं, अइमाए तारीख अलैहिस्सलाम ने इस मैदान में हमारी बेहतरीन रहनुमाई की है। समाज कुनबे से बनता है और कुनबे की तश्कील होती है, उनकी फाउंडेशन और बुनियाद है जनो शोहर मियां और बीवी। इब्तदाई मरहला यही है कि इंसान शादी के बंधनों में बंध जाए, उसके बगैर फैमिली तश्कील न पा सकेगी और फैमिली के बगैर समाज तश्कील नहीं पा सकता है। इसीलिए इतनी अहमियत इस्लाम में शादी को दी गई। जो शादी कर सकते हैं और शादी नहीं करते उनके बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शराबुकुम उज़्ज़ाबुकुम वल उज़्ज़ाब इख़वान शयातीन। बदतरीन इंसान वो है जो शादी के इम्कान के बावजूद शादी न करके कुंवारे बने, वो बदतरीन इंसान है। शयातीन और कुमारे शैतान के भाई बनते हैं। दादा इस्लाम आप देखें, अगर आप कुआरा अगर नमाज पढ़ता है एक रकात नमाज पढ़ता है कुआरा, उसे एक रकात का सवाब, एक रकात पढ़ा तो सवाब एक रकात। लेकिन जब इंसान शादी के बंधनों में बंध जाता है तो एक रकात पढ़ता है और 70 रकात का सवाब मिलता है। ये खामखा नहीं है, बिला वजह नहीं है, ये शादी नहीं कर रहा है, ये शादी करके बहिष्ती समाज की बुनियाद डाल रहा है। लिहाजा से शादी को इतनी अहमियत दी गई तो ये भी बताया गया कि शादी किससे करना है। देखिए ये बात अपनी जगह के ऊपर साइंसी तौर पर भी साबित शुदा है और हदीस और कुरान की रोशनी में भी साबित शुदा है कि एक हमनशी दूसरे हमनशी पर असर करता है। एक मुअस्सिर होता है, दूसरा ये जो है मुतअस्सिर होता है, उसके असर को कबूल करता है। जहां दो आदमी होंगे एक मुअस्सिर और एक ये जो है मुतअस्सिर है। शादी कहते हैं एक दफा एक इंसान ने एक बाग से थोड़ी सी मिट्टी उठाई तथा मिट्टी से खुशबू आ रही थी। उसने पूछा कि तुम्हारे अंदर खुशबू कहां से आ रही है, हाथ में तो खुशबू नहीं होगी। उसने जवाब दिया, कमाले हम नशी दर मन असर कर बगरना मन हम फाकम की उदर। लेकिन मुद्दतों तक मैंने फूल की हमनशीनी अख्तियार की थी, फूल का कमाल हमारे अंदर सरायत कर दिया। इस्लाम ने हमनशीनी पर बहुत जोर दिया है कि हर एक की हमनशीनी अख्तियार ना करना। अलमरु अला दीन खलीले, हमनशी और दोस्त का इतना असर होता है कि इंसान का दीन वही हो जाता है जो उसके दोस्त का दीन। इंसान को जितना दोस्त असर अंदाज होता है, हम नशी असर अंदाज होते हैं, उतना मां बाप का भी असर नहीं होता है। आप देखिए, फर्ज करें कि आपको कहीं जाना है, मस्जिद में आना है, नमाज में जाना है, नमाज जुमा में जाना है, इमाम बाड़े जाना है, आप बच्चे से कहें बेटा चल रहे हो, बता वो बच्चा जो बड़ा हो चुका है, चार साल पांच साल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, वो बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, नहीं पापा आज मैं नहीं आऊंगा, आज मेरा एग्जाम है, अभी मालूम है होमवर्क बहुत ज्यादा है, अल्लाह है भला है अल्लाह पाने। उसी में उनके दोस्त का टेलीफोन आ गया, आज चले हो मामा ने, आज नस्ती चलोगे तुम, मैं आ रहा हूं, तुम भी आ रहे हो, अच्छा अच्छा मैं भी आ रहा हूं। अब ना वो होमवर्क रह गया, ना वो जो है इम्तिहान रह गया, सब कुछ खत्म। किसकी हम नशीली अख्तियार करें, किसके साथ उठे बैठे, किसे अपना दोस्त बनाए, अरे को दोस्त नहीं बनाना है। जवाब में मासूम फरमाते हैं कि किसे दोस्त बना, मैं तो जाओ मैं योजा अमल को देख करके आखिरत की याद आ जाए और जिसकी गुफ्तगु तुम्हारे दिल में इजाफे का सबब बने। ऐसे के साथ ना बैठोगे, दस घंटा ये जो हम बकवास करते रहे, एक जर्रा भी इल्म में इजाफा ना हुआ। ऐसे के पास ना बैठो तो तुम्हें याद खुदा से गाफिल करते हैं, ऐसे के पास ना बैठो तो तुम्हें आखिरत से दूर करते हैं, याद आखिरत को फरामोशी के हवाले समान किया गया उन जगहों पर बैठने के लिए जहां पे अल्लाह का गुनाह किया जाता है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दो तरह के लोग होते हैं ना, कुछ अफराद वो होते हैं कि अगर किसी बस में आ जाए तो फौरन बस का माहौल बदल जाए, उनको देख करके लोग गुनाह करना छोड़ देंगे। हम लोग अक्सर होता है अभी इतना एहतराम उलमा का बाकी है, अभी निकल में टीवी चल रहा है, गाना चल रहा है, जय जय मौलवी साहब आगे बंद करो बंद करो बंद करो बोल साहब, तो अभी ये पहुंच जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा। जय जय मौलवी साहब को देखा फरों दुपट्टा ठीक होने लगा, यानी हिजाब मौलाना के डर से है, अल्लाह के डर से है। हाँ, हमारे यहां जबान से अल्लाह होकर कहते हैं, अगर मौलाना उससे बड़े हैं तो अल्लाह का खौफ नहीं है। लेकिन बहरा वह हुआ लायक दे दो, अगर आपकी ये ताकत है, अपनी आपकी हैसियत ऐसी है कि फला के हाँ अगर चले जाएंगे तो आपके जाने के बिना पर गुनाह की महफिल ताज की महफिल में तब्दील हो जाएगी तो जरूर जाएंगे। लेकिन नहीं, आप जाएंगे आपके जाने में यार को असर नहीं पड़ेगा, गाना बज रहा है तो बजता रहेगा, मेरी आई की महफिल
तो कितनी देर कोई बैठता है किसी बस में?
घंटा दो घंटा।
दोस्त के साथ इंसान कितना वक्त गुजारता है?
3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा,
यही तो होता है ना। जिनके साथ चंद घंटे गुजारना है उनके लिए इस्लाम में इतनी शर्तें लगा दी, लेकिन जिसके साथ पूरी जिंदगी बसर करना है,
शादी तो 2-4 घंटे का मामला तो नहीं है।
शादी तो शादी के मौके पर अच्छी तरह से थोक बजा करके देखना है। मामूली सा सामान भी खरीदते हैं, 10 दफा उलट पलट के देखते हैं। शादी करने जा रहे हैं, लड़की के लिए लड़का, लड़के के लिए लड़की, जिस चीज को इस्लाम ने अहमियत दी है वो है ईमान, वो है
जो है बुनियाद का रिश्ता ठुकरा देना कि ये गरीब है, एक बुनियाद का रिश्ता ठुकरा देना कि हम मालदार हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
मोमिन रुज़अतिन अशद्दु अला अब्दिन अन यातियहू इब्नु अखी फयकूल सबसे बड़ी मुसीबत एक बंदे के लिए यह है कि उसके पास उसका बरादरे मुसलमान बरादरे मोमिन आए और आने के बाद उससे उसकी लड़की का रिश्ता मांगे कि आपकी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, वो ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इसलिए कि मैं मालदार हूं तुम गरीब हो।
शादी इसलिए नहीं करूंगा कि तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, शादी इसलिए नहीं करूंगा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास अखलाक नहीं है, तुम्हारे पास अकल नहीं है। अगर इसलिए इनकार कर रहे हैं, खुदा की निगाह में ममदू है, लेकिन इसलिए इनकार कर रहे हैं कि वो गरीब है, उसके पास दौलत नहीं है। फरमाते हैं मां इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है, रिश्ता ठुकराया जाए इस बुनियाद के ऊपर, इस बुनियाद में जो लड़का रिश्ता लेके आया है सब कुछ है उसके यहां, तकवा ईमान है, अक्ल सालिम है, बेहतरीन अखलाक का मालिक है, मगर गरीब है, जॉब नहीं मिली है।
दूसरे उठे बेचारे,
हर पढ़े लिखे को जॉब नहीं मिल जाती,
जॉब नहीं मिल सकती है उसे,
बिजनेस करने की उसके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन बकिया सारे कमालात उसके साथ मौजूद हैं। क्या कोई लड़की है इसके अचार नहीं कर रहा है? लड़की बातवा है, लड़की बात अखलाक है, लड़की बा ईमान, आपके पास देर देने के लिए नहीं है, या फर्ज किए कि जो है हुस्न जमाल उसके पास नहीं है। अगर इस नला मनिश्ते को ठुकरा दिया गया तो इमाम फरमाते इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं हो सकती, बस सबसे बड़ी मुसीबत एक रिश्ता ठुकरा दिया जाए दौलत की बुनियाद पर। रिश्ते को कबूल करना या रिश्ते को ठुकरा देने का सिर्फ एक ही चीज है, सलामत दीन, सलामत अक्ल, सलामत अखलाक। माल दौलत को मेयार नहीं करार दिया गया है। चुनांचे हदीस है, छठे इमाम से भी हदीस है और पैगंबर इस्लाम से भी हदीस, बदास हदीस है, हमारी सारी की सारी पैगंबर ही से है। अइमा जो कुछ नकल करते हैं वो पैगंबर ही से नकल करते हैं, खुद कह चुके हदीस ही हदीस व आबाई, हदीस व आबाई हदीस व जद रसूलुल्लाह। हम लोग कुछ कहते हैं अपने आबाओ अजदाद से नकल करते हैं, उन्होंने पैगंबर से नकल किया है, लिहाजा अगर कोई हदीस
نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں من تزوج امرأة لمالها, اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس لیے اس کے پاس مال ہو, دولت مند ہو, بڑے مالدار باپ کی بیٹی ہے, کروڑوں کا جہیز ملے گا. اگر دولت کی خاطر کو کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے, یہ دفعہ ہے کہ لڑکی دولت مند بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے, دولت مند بھی ہے, صاحب تقوا بھی ہے, دولت مند بھی ہے, صاحب عمل و خیرت و اخلاق بھی ہے. شادی دولت کے لیے نہیں کر رہا, ایمان کے لیے کر, کیونکہ دولت مندوں سے شادی کرنے پر پابندی نہیں ہے. لیکن مقصد شادی کا یہ نہ ہو کہ چونکہ پیسہ ہے اس کے پاس اس لیے شادی کر رہے ہیں. اگر کوئی اس خاطر شادی کرتا ہے اس کے پاس لاٹری نکل آئی. من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه, اگر کوئی شخص یا لڑکی سے شادی کر رہا ہے اس کے مال کے خاطر, اللہ اسے اسی مال کے حوالے کر دے گا, اللہ اسے بخشا ضرور لے گا. جاؤ, تمہارا نگہبان, تمہارا سربراہ, تمہارا گارجین, تمہارا مال ہے. اور خدا نہ کرے کہ اللہ کسی کو اس کے حال کو چھوڑ دے, خدا نہ کرے. کتنی بڑی مصیبت ہے سمجھنا, اگر چاہیں گے تو یہ واقعہ سن لیجیے. ازواج پیغمبر کہتی ہیں اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات میں ہماری آنکھ کھلی, ہم نے دیکھا کہ رسول خدا بستر پہ ڈے گئے, تلاش کرنے لگے کہاں ہے اللہ کے رسول, ڈھونڈتے ڈھونڈتے نظر آئے تو گوشے میں وہاں کونے میں خاک کے اوپر اپنے رخساروں کو رکھے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پہ ایک ہی جملہ ہے, الہی لا تکلنی الا نفسی طرف عین, میرے معبود مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال میں چھوڑ مت دینا. ارے فخرِ کائنات, فخرِ کائنات اللہ کی توجہ کے محتاج ہے, تو ہم جیسے انسانوں کا کیا حال ہوگا. وَكَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ ایسا کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا. وَمَن تَزَوَّجَ لِجَمَالِهَا رَأَى فِيهَا مَا يَكْرَهُ, اور جو شخص کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی بنا پر, اس کے حسن کی بنا پر, اس کے جمال کی بنا پر, نہ دین دیکھا, نہ تقوا دیکھا, نہ اخلاق دیکھا, نہ عقل دیکھا, صرف ایک چیز ہے کہ خوبصورت بہت ہے, جو حسن کی بنا پر شادی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو ایسے شخص کو ناپسند ہے وہی اسے اس عورت میں نظر آئے گا بعد میں. اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے مال کی خاطر نہیں, جمال کی خاطر نہیں, بلکہ اس میں جو کمالات پائے جاتے ہیں اس کے دین کے خاطر, اس کے تقوی کے خاطر, اس کے اخلاق کے خاطر اگر کوئی مثل پیش بنا کر کے شادی کرتا ہے جمال تاکہ دل کو اچھا لگے نا. اگر مال اور جمال کی شادی کرو گے یہ دونوں چیزیں چھین جائیں, سکون کو ترس جاؤ گے. لیکن اگر دین کی خاطر شادی کر لیا سکون ہی سکون ہے, اطمینان ہی اطمینان خدا عطا کرے گا. جو رہنمائی ہمیں دی گئی, رہنمائی اقوال کی شکل میں بھی ہے اور سیرت کی شکل میں بھی ہے. اقوال اور سیرت دونوں ان شاء اللہ عرض کروں گا. الحمد للہ ہمارے ہاں معصوم اقوال بھی ہیں اور معصوم سیرت بھی ہے. قرآن معصوم ہے نا, کوئی تحریف نہیں, ڈائریکٹ اللہ کا کلام, ڈائریکٹ اللہ کا کلام, اور معصوم سیرت بھی ہمارے پاس ہے. ایسی شادی بھی ہمارے یہاں جہاں دونوں طرف معصوم, شوہر ایک آئیڈیل شادی ہے نا, ایک آئیڈیل شادی ہے. دیکھیں گے کہ وہاں کے اوپر जब रिश्ता आया तो किसका ठुकराया गया, किसका कबूल किया गया? ठुकराने की बुनियाद क्या थी, कबूल करने की बुनियाद क्या थी? तो अभी तो किस चीज को इस्लाम में अहमियत दी है, हदीसों में, आयतों में, ईमान अखलाक ईमान अखलाक इन तीन चीजों को अहमियत दी गई है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ऐसी औरत से हम नशीनी जो है उम्र को बर्बाद करना है, और जो औलाद पैदा होगी वो औलाद की जो है सितमगर होगा। मना किया गया, मना किया गया है कि देखो सिर्फ हुस्न के चक्कर में बद अखलाक बदतीनत बेतरबियत लड़कियों से शादी मत करना। पैगंबर फरमाते या का वह खतरा अदमन घूरे के फूल से बदले से करना दूर रहेगा। किसी ने कहा या रसूलल्लाह वह खतरा अदमन क्या कहना चाहते, घूरे का फूल क्या बनता, घूर के ऊपर फूल निकला हुआ है, घूर को जगाना घोड़ा देखा जा रहा है, ये जो है मसला मसले के फूल से परवेश करना वह खतरा उद्दमन। पैगंबर ने फरमाया अलमरतुल हसना फी मनबतिन सुन, वो खूबसूरत लड़की इसकी तरबियत अच्छी नहीं, बुरी तरबियत की हामिल है, मगर खूबसूरत लड़की है हमेशा उससे अपने को दूर रखना। इतनी ताकि क्यों हो रही कहे कि लड़ गया मैंने कि मकसद शादी अगर आपके दहनों में होगी शादी के लिए, जो कल तीन मकसद मैंने आपके सदर दर्ज किया था, एक मकसद था मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन नस्ल की फराहम, बेहतरीन नस्ल की औलाद में माँ और बाप का किरदार असरदार होता है। कल तक फकत हदीस और कुरान से बयान करते थे, आज साइंस से बयान करने लगे। जीन क्या चीज है, जिसे आज के साइंस जीन कहती है उसे हमारी हदीसों में इर्क कहा जाता है। जीन का फलसफा आज भी मशीन हुआ है, जीन का फलसफा आज भी मशीन हुआ है, और हमारे आइमा मासूमी और पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले जीन के फलसफे को बयान किया। कल मैंने वो मौला का कॉल पेश किया था ना, जब मोहम्मद हनफिया के गीत पर वाक्य कहा था आज का इरकुन मिन उम्मिक, ये बुजदिली तुम्हारी मां का जीन है उसका असर है। इरक कहते हैं जीन منتقل کرتا ہے بدکردار ماں باپ کی آغوش میں زیادہ امکان نہیں ہے کہ بچے جو پلے گی وہ بدکردار بچے ہوں گے۔ قرآن مجید میں جناب نوح کی داستان اگر آپ پڑھیں جہاں جناب نوح نے بد دعا کی خدایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ کیوں؟ اب جانتے ہیں جناب نوح نے 950 سال تربیت کی تھی، 950 سال، 950 سال میں کتنے لوگوں کی ہدایت کر پائے تھے؟ حد اکثر جو روایت ملتی ہے وہ 80، ایوریج کیا نکل رہا ہے؟ 950 سال تبلیغ کی، ایک گھنٹے والی نہیں، ایک گھنٹہ ہمارے ہمیں تقریب کیا سنا چلے گئے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جناب نوح کہتے ہیں پروردگارا میں نے اپنے قوم کی ہدایت رات دن کی 24 گھنٹہ، دن میں 24 گھنٹہ، ہفتے میں 7 دن، سال میں 365، خاص دن کے لیے نہیں ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اور کس طرح سے کیا انہوں نے، ایک ہم لوگ بھی تبلیغ کرتے ہیں آرام سے بیٹھے ہیں، بہترین کھانا، بہترین جگہ، سبحان اللہ، محبت، الحمدللہ، اترے، مسافیہ، یہ ساری چیزیں، ان کا عالم کیا تھا؟ وہی आज मैं यहाँ हदीस पढ़ रहा हूँ, आपको अगर बुढ़िया डालने तब से आऊंगा ही नहीं, घर से आऊंगा ही नहीं। क्या कलेजा है नबी खुदा का? क्योंकि ये नबी खुदा जो है ये पेशावर जो है मुबल्लिग नहीं है, इखलास है, दर्द है इसके दिल में, दर्द है दिल में। ईमान को अहमियत देना है, किस चीज को अहमियत देना है? तकवे को अहमियत देना है, किस चीज को अहमियत देना है? अखलाक को अहमियत देना है, किस चीज को अहमियत देना है? अक्ल को अहमियत देना है, सलामत दीन, सलामत अखलाक, सलामत अक्ल, ये तीन चीजें हैं। अगर ये बदकिरदार हैं तो आइंदा आने वाली
ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। जिसको हमने नाम दिया मरियम, कुमारी मरियम अपनी आंखों में ईसा को लेकर के आई है तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, कुमारी के गोद में बच्चा कैसे, क्योंकि तो मरियम कौन है? क्या कहा तुम क्या होता हारून मां का अबू के मृगा सौ इन व मां का नुकेर बदिया। मरियम तुमने उनके ख्याल में आया बदला यह था कि मरियम ने नौ बिल्ला ये जो है बदकारी की है जिसके नतीजे में बच्चा अपने
एक और जो हुआ अच्छा खाकर फुहारा लग गया, इन
کو مزہ آ رہا ہے، مزارا پانی بہ رہا ہے، پانی کی قلت تھی نہ تو نہیں آج کے طریقے سے کیا کو یہ جو ہے وضو کرنا ہے، ایک گلاس پانی سے اور بہا دیتے ہیں سینکڑوں لیٹر پانی، کھول دیا نل کو جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو گیا پانی بہ رہا ہے، پرواہی نہیں کس نے کیا ہے نا، تو مشق کا پانی ہے ختم ہو گیا تو جس طرح سے یہ جو ہے وضو کر رہے ہیں کا پانی برباد کر رہے ہیں۔ اچھا ہم لوگوں کو اگر خبر مل جائے کہ ہمارا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو عام طور سے دو ریئیکشن ہوتا ہے، کبھی تو رہے بچہ بچہ اور کبھی بچے کو بلا کے ڈانٹے گئے کان پکڑ کے، کبھی بچے کی غلطی میں اپنی غلطی ہم نہیں ڈھونڈتے، جب ڈھونڈتے ہیں اگر بچے نے کوئی غلطی کی کوئی خطا کی بچے نے، کبھی بچے کی خطا میں اپنی خطا نہیں ڈھونڈتے، ریئیکشن کے طور پر محمد भाई क्या कहना कि भी बच्चे आपके अधीन है, क्या आपने औलाद पाई है, आपके औलाद का क्या कारनामा है, जिंदगी में ना कोई वाजिब होता, ना कोई मुस्तहब, ना किसी हराम का इर्तिकाब, ना किसी मकरूह का इर्तिकाब ना घर पे आए। मैंने कहा इसमें तहज्जुद की कौन सी बात है, मैंने अपने बच्चे की तरबियत ही ऐसी की है, मैंने आज तक अपने बच्चे को ना कोई नजिस खाना खिलाया ना कोई हराम। यही नहीं, जब मैं बच्चे को दूध पिलाना चाहती थी पहले जो है वजू करती थी तब दूध पिलाती थी, इतनी तहारत और पाकीज़गी का मैंने ख्याल रखा है। बच्चों की तरबियत ही ऐसे ना हो, दूध पिलाना एक मुबाह काम है ना, नमाज नहीं पढ़ना है, कुरान नहीं छूना है, दूध भी पिलाना है बच्चे को, पहले वजू कर लेते थे, खाना पकाते थे पहले वजू कर लेते थे, लुकमा दहन में डालते थे पहले वजू कर, लोरियों में वहां पर आयाते कुरानी सुनाई जाती थी, नदी से बनी माँ सुनाई जाती थी लोरियों में, कुरान की सब की फजाओं में बच्चे पले। तो ये मैं आपको शादी के एक अमली नमूना सीरत पेश करता हूं। जनाब मासूम आलम फातिमे ज़हरा सलामुल्लाह जब पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी की तो रिश्ता कुछ रिश्ते ठुकराए थे, कुछ रिश्ता को क्योंकि पहला रिश्ता तो मौला का नहीं आया था, मौला से पहले भी रिश्ते आ चुके थे शिया सुन्नी दोनों किताबों में, किताबों में सबसे पहला रिश्ता जो आया है वो खलीफे अव्वल रिश्ता लेकर के आया, बेटी उनकी घर में थी पैगंबर के, अपनी बेटी आयशा को उन्होंने वास्ता करार दिया कि जाओ जाकर पैगंबर से रिश्ते के बारे में बात करो। आयशा आई, आने के बाद पैगंबर से तस्करा किया, पैगंबर ने फरमाया कि इसका इख्तियार अल्लाह को है, मैं इंतजार कर रहा हूं। दूसरे जवाब हमें सुनने को पड़ता, यानी अल्लाह आपके रिश्ते से राजी नहीं है। उसके बाद खलीफा लोगों का रिश्ता, उनकी बेटी भी हफ्सा वहां मौजूद थी, अपनी बेटी के जरिए से गए, उनको भी यही जवाब मिला। उसके बाद तीसरे और चौथे कलर का दोनों एक साथ गए, एक का नाम है अब्दुल रहमान इब्ने औफ, दूसरे का नाम है उस्मान इब्ने अफ्फान, तीनों के दोनों एक साथ गए। अब्दुल रहमान इब्ने अफ्फान, अब्दुल रहमान इब्ने औफ बहुत मालदार है, फिलहाल इससे बहस नहीं कि दौलत कहां से आई कैसे आई, छोड़िए किससे, अब्दुल रहमान
दौलत की धौंस दिखा रहे हो, पैगंबर ने कंकरी मुंह पे मारी, तहा
امام سجاد کا جب ہاتھ اٹھا تھا یاد ہے نا قصہ ظہم باطن ہی کیا اچھا شاعر نے کہا ہے ظہم باطن ہی صحیح پھر بھی ہے دل لگتی ہوئی بات مال دنیا ہو یا سر و خدا کچھ بھی نہیں ظہم باطن ہی صحیح غلط بات ہے ظہم باطن ہی صحیح پھر بھی ہے دل لگتی ہوئی بات مال دنیا ہو یا سر و خدا کچھ بھی نہیں ہاں مگر سید سجاد نے ثابت یہ کیا سیم و زر ہاتھ کے دھوبن کے سوا کچھ بھی نہیں سلام پڑھیں گے محمد والے محمد ان کو بھی جواب ہو گیا دولت دکھانے آئے ہو فاطمہ کا رشتہ دولت کی بنیاد پر ہوگا جب یہ چلے گئے تو روایت میں ہے دلائل نے جبریل و فتل کا سا اس وقت جبریل نبی نادی ہوئے قالا ان اللہ عز و جل یقرؤ یا احمد ان اللہ عز و جل یقرؤ کا سلام اے احمد خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور خدا کا
¡Gracias!
सोता हुआ काबा, काबा एक नातिक है, काबा सामित का तो बड़ा एहतराम करते हैं, काबा सामित का बड़ा एहतराम करते हैं, जरा अगर कोई उसकी बेहतरामी कर दे तो जान देने में तैयार हो जाते हैं, मगर काबा नातिक का क्या एहतराम। काबा नातिक के दरवाजे पर आग और लकड़ी को लेकर आ गए, काबे नाजम के दरवाजे पर आप और लकड़ी देख कर क्या गए, काबे नाजम के गले में रस्सी आती, काबे नाजम के गले में रस्सी आती, क्या आलम था। यानी हम लोग इस मुसीबत को दर्क नहीं कर पाते, सुन लेते हैं हमारा कलेजा नहीं फट जाता, लेकिन जो समझते थे उनका कलेजा फट जाता था। फातिमा समझती थी इस मुसीबत को, चांद रवायत में एक दिन मौलाए कायनात घर से बाहर से घर आई है, जनाबे मासूमा बिस्तरे अलालत पर बीमार है, क्या बीमारी है फातिमा की मालूम है ना, फातिमा की बीमारी मालूम है ना क्या बीमारी है, पसलियां टूटी हुई है, बच्चा बदले मादर में शहीद हो गया, लेकिन मासूमा ने अपना टुकड़ा नहीं बयान किया, अपने पहलू की तकलीफ के बारे में अली से कोई तस्करा नहीं किया, अपने शोक नकाहत के बारे में अली से कुछ न कहा, बस एक सवाल अली से करती है, अबुल हसन मैंने सुना है कि आप लोगों ने आपको सलाम करना छोड़ दिया है, मौला फरमाते फातिमा इतना ही नहीं कि लोगों
پالنے والے سکتے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زندگی ہمیشہ اسلامی تعلیمات کے سائے میں بسر کر سکیں۔ بارے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم خود اپنے کو گناہوں سے دور رکھ کر کے اپنی اولاد کو گناہوں سے دور رکھ سکے۔ ماں کو تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارے اللہ سکتے میں اہل بیت اطہار کی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بارے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ معبود جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق فراہم فرما۔ بارے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بارے اللہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق فراہم فرما۔ معبود صفے میں اہل بیت اطہار کے مراجع اعظام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما۔ بارے اللہ شیعیان حیدر کرار کی حفاظت فرما، ان کے دشمن جہاں نہیں بھی ہیں اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح و الا انہیں بیس تو نابود فرما۔ بارے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه
Y'all say.